संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षदे। ये समय सार नामक परमागम है, इसे आचार्य कुंदकुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। यदि आचार्य कुंदकुंद दिगंबर जैन आचार्य परंपरा के शिरोमणि आचार्य हैं, तो शुद्धात्मा का प्रतिपादक उनका यह समय सार संपूर्ण जिन वांग्मय का सिरमौर है। भगवान आत्मा के प्रतिपादक इस ग्रंथादिराज समय सार में जिनागम का अजोड़ रत्न है आचार्य अमृतचंद्र, इसे जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु कहते हैं। और वे तो यहां तक कहते हैं कि इस जगत में इससे महान और कुछ भी नहीं है। आचार्य कुंदकुंद स्वयं ही समय सार का समापन करते हुए अंत में लिखते हैं कि जो व्यक्ति इस समय सार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय तत्व और अर्थ से करेगा, यानी उसके में प्रतिपादित तत्व को उस वस्तु रूप से जानेगा, पदार्थ रूप से जानेगा, वो निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करेगा, यानी वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, सम्मद असम ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करेगा। ऐसा यह ग्रंथादिराज महान क्रांतिकारी ग्रंथादिराज है। लाखों लोगों का जीवन इस समय सार के अध्ययन से बदला है। कभी बार बनारसी दास जी, श्रीमद रायचंद जी, आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी, इन सबके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला यह ग्रंथादिराज समय सार ही है। इस ग्रंथादिराज पर भरी सभा में 19 बार प्रवचन करने वाले आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी कहते हैं कि यह जैन आगम का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लाखों शास्त्रों का सार इसमें भरा है, यह साधकों की कामधेनु है, कल्प वृक्ष है और छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले संतों का जो आत्मानुभव है इस प्रत्येक गाथा में समाहित है। यह समय सार ग्रंथादिराज जैनियों की गीता है, ये जैनियों का कुरान है, ये जैनियों की बाइबल है। इसमें उस शुद्धात्मा का वर्णन किया गया है कि जिस शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है। समय सार, समय शब्द का वैसे तो अनेक अर्थ होते हैं। समय माने टाइम होता है, माने काल, समय माने देश भी होता है, माने क्षेत्र, समय माने शास्त्र भी होता है, समय माने मत भी होता है, यहां तक कि समय माने युद्ध भी होता है। लेकिन यहां समय शब्द आत्मा के अर्थ में है। इसकी व्याख्या करते हुए आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु है जो गमनार्थक है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जिन जिन धातुओं का अर्थ जाना होता है उनका अर्थ नियम से जानना भी होता है। इस लोक में दो ही पदार्थ ऐसे हैं, जीव और कुदगल, जो गमन करते हैं। बाकी के चार द्रव्य, धर्म, धर्म, आकाश, काल, वो तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कभी जाते ही नहीं है, गमन करते ही नहीं है। तो ये जो दो पदार्थ हैं, इनमें एक जीव पदार्थ ऐसा है कि जो गमन करने के साथ साथ जानने का काम भी करता है। तो हम ऐसा लगाएं कि जो गमन करे उसका नाम समय, तो उसमें जीव और पुद्गल दोनों ही आ जाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा अर्थ लगाएं कि जो परिणमन करे वो समय, तो परिणमन छह ही द्रव्य करते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा छह ही द्रव्य। लेकिन जब हम ऐसा अर्थ करें कि जो गमन करे यानी परिणमन करे, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन भी करे और साथ में जाने भी, तो उसका अर्थ होगा आत्मा। इस तरह समय शब्द के मूलतः दो अर्थ होते हैं इस समय सार के संदर्भ में, एक छह ही द्रव्य और दूसरा आत्मा। जब हम समय शब्द का अर्थ छह द्रव्य करते हैं तो सार का अर्थ होता है कि उन छह द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ सारभूत पदार्थ आत्मा है ना। सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान, कि संपूर्ण पदार्थों में ये आत्मा एक सार है। इसलिए समय माने छह द्रव्य, तो समय सार माने आत्मा। लेकिन यदि हम समय का अर्थ आत्मा करते हैं तो सार का मतलब होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों से रहित ऐसा शुद्ध आत्मा, वो समय सार है। द्रव्य कर्म तो आप जानते हैं, ज्ञानावरण आदि जो आठ कर्म हैं जिनकी 148 प्रकृतियां होती हैं उन्हें द्रव्य कर्म बोलते हैं। और आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें भाव कर्म बोलते हैं। और ये शरीर, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, इस सारे बाह्य पदार्थों को नो कर्म बोलते हैं। इसे हम सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म के उदय दो प्रकार से फलते हैं, एक जीवों के भावों के रूप में और एक संयोग के रूप में। यानी जो भातिया कर्म होते हैं, ज्ञानावरण आदि मोह आदि कर्म, उनके उदय से आत्मा में क्रोध मान माया लोभ ऐसे विकारी परिणाम होते हैं, अज्ञान मिथ्यात्व ऐसे विकारी भाव होते हैं। तो इन मोह राग द्वेष परिणाम को जो कर्मों के उदय से आत्मा के विकारी भाव के रूप में फलते हैं उन्हें बोलते हैं भाव कर्म। और कर्म के उदय से हमें ये सुंदर शरीर मिला, सुंदर मिला, कुरूप मिला, जैसा ही मिला, ये संयोग मिला ना, ऐसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुस्तान परम पवित्र देश है, तो इसमें भी हमारे कोई पुण्य कर्म का योगदान है, उसकी वजह से हमको ये प्राप्त हुआ है। हम इस कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे कुल में पैदा हुए हैं कि जिसमें मांस मदरा नहीं है। यदि हम ऐसे कुल में पैदा हुए होते कि जहां जन्म से ही मांस मदरा का सेवन खाने को होता है, तो हमारी क्या स्थिति होती। तो ये भी हमारे कोई महापुण्य के उदय से हमको प्राप्त हुआ है, स्वस्थ शरीर मिला है, ये सब नो कर्म कहलाते हैं। और अस्वस्थ शरीर मिला है वो भी कर्म के उदय से मिला है, पाप कर्म के उदय से मिला है। तो ये जो कर्म के उदय से जितने भी बाह्य संयोग मिलते हैं उसे बोलते हैं हम नो कर्म। तो कर्म तीन प्रकार का हो गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण आदि कर्म, भाव कर्म माने मोह राग द्वेष के परिणाम, और नो कर्म माने कर्म के उदय से हमें जो भी संयोग मिले हैं शरीर से लेकर देश गांव तक नगर तक, उन सबको बोलते हैं नो कर्म। तो इन सब से भिन्न है भगवान आत्मा। तो आत्मा माने इन सब से सहित करें तो उसे आत्मा समय, और जब इससे भिन्न करें तो समय सार। सार माने इन संयोगों और ये राग देश मोह के संयोगी भावों से जो भिन्न है आत्मा, ये बताने के लिए सार शब्द उसमें डाला है। तो इस तरह इस समय सार नामक ग्रंथ आदि राज में द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म माने मोह राग द्वेष के परिणाम, ज्ञानावरण आदि कर्म और शरीर आदि स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इनसे भिन्न जो भगवान आत्मा है उसका नाम है समय सार। चूंकि इस ग्रंथ में उस आत्मा का स्वरूप समझाया जाएगा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा समय सार। ये समय सार इस ग्रंथ का नाम क्यों है, ये इस दृष्टि से ये समय सार इस ग्रंथादि राज में ये आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा। और ऐसा जो आत्मा है द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से भिन्न, उसमें अपनापन स्थापित होने का नाम कि यही मैं हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। इसे हम निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। उस भगवान आत्मा को जानना, न केवल जानना बल्कि ये जानना कि यही मैं हूं, आत्मानुभूति पूर्वक, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और ऐसे उस आत्मा को जानकर, उसे निज जानकर, उसमें अपनापन स्थापित होकर, जो उस आत्मा में स्थिरता होती है, आत्मा में लीनता होती है, हमारा उपयोग उसमें ठहरता है, उसको बोलते हैं ध्यान अथवा सम्यक चारित्र। वास्तव में इसी समय सार की 34वीं गाथा में जाकर ये कहेंगे कि स्थिर हुए ज्ञान का नाम ही त्याग अथवा ध्यान है। स्थिर हुए ज्ञान का नाम ही, तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, इन्हीं को मुक्ति का मार्ग कहते हैं। तो इस तरह इस समय सार ग्रंथादि राज में उस शुद्धात्मा का वर्णन किया जाएगा कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण करके आचार्य कुंद देव तत्काल दूसरी गाथा में पहली बात ही शुरू कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। मूल गाथा है, दूसरी गाथा हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बात कही हुई है कि दर्शन ज्ञान चरित्राणी जीवो चरित्र दर्शन राणत्थिदो तं ही ससमयम जाने पोगल कम पदेशत्थिदम च तम जान पर समयम। कि जीव जब दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होता है तो उसे स्वसमय जानो, और जब वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है तो उसे परसमय जानो। मन समय माने आत्मा दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक तो वो आत्मा कि जिसने अपने शुद्ध स्वभाव को पहचाना है और उसमें ही अपनापन स्थापित किया है, उसे ही निज जाना है, उसमें ही स्थित हो गया है, उसे बोलते स्वसमय माने धर्मात्मा यानी सम्यक दृष्टि, इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न मुक्ति मार्गी, उसे बोलते हैं स्वसमय। और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, इसका सीधा सच्चा और सरल सा अर्थ यह है कि पुद्गल कर्म के उदय से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वो भाव कर्म के रूप में हो और चाहे नो कर्म के रूप में हो, जिसकी बात अभी कही थी ना, उसमें अपनापन स्थापित करना कि ये मैं हूं, उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उसके ही ध्यान में मगन रहना, उसकी चिंता में लगे रहना, इसका नाम है परसमय। ये तो आत्मा की उस दशाओं का वर्णन हुआ, लेकिन वो स्वसमय और परसमय, हम इन दोनों को उपेक्षा कर दें कि उसने अपने आत्मा को निज जाना है कि पर को निज जाना है, इन दोनों